आप सुन रहे हैं फीवर पॉडकास्ट ब्रॉट टू यू बाय एचटी स्मार्टकास्ट।
एक अधूरी कहानी,
एक अधूरी कहानी, कहानी वाला देव के साथ।
कहते हैं मौत सिर्फ मरने वाले को नहीं आती, उसके आसपास रहने वालों में से जिसे भी मरने वाले से सबसे ज्यादा और सबसे निस्वार्थ प्रेम होता है, उनकी आत्मा का एक हिस्सा भी जाने वालों की मौत के साथ साथ मर जाता है। रात का वक्त था, चिंटू को नींद नहीं आ रही थी, बार बार बस करवटें ही बदले जा रहा था। कल ऑफिस में छुट्टी भी थी तो जल्दी उठने, तैयार होने वगैरह की कोई चिंता नहीं थी। सोचा थोड़ा टहल के आते हैं। चिंटू ने चप्पल पहनी और निकल पड़ा टहलने। उसके माँ बाप का देहांत बचपन में ही हो गया था। एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी और विदेश में रहती थी, लेकिन जितने दिन तक यहाँ थी दीदी और जीजा जी ने ही चिंटू की देखरेख की थी, उसे पाल पोस के बड़ा किया था। फिलहाल चिंटू अकेला कलकत्ता में एक फ्लैट किराए पे लेके रहता था और अच्छी सरकारी नौकरी थी पोर्ट ट्रस्ट में। टहलते टहलते चिंटू थोड़ा आगे निकल आया था, थकान होने लगी थी तो वापस घर जाने को मुड़ गया। जाते जाते एक मोड़ पड़ा जहां से उसे जाना तो सीधे ही था, लेकिन दाईं ओर जाती हुई सड़क पे बड़ी रौनक, बड़ी चमक दमक दिख रही थी, लोग भी काफी थे। चिंटू उधर ही मुड़ गया देखने के लिए कि हो क्या रहा है। थोड़ा सा चला तो उस महफिल के पास पहुंचा। एक पेड़ के पीछे से खड़े होकर देखा तो एक लंबी सी टेबल लगी थी। एक सफेद शर्ट पैंट पहना मालिक टाइप का आदमी कुर्सी लगाए बैठा था और ढेर सारे लोग लाइन लगाए खड़े थे, जैसे कुछ बांटा जा रहा हो। लेकिन बहुत अजीब बात थी, कोई आवाज नहीं थी, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, किसी तरह की कोई आवाज कहीं नहीं थी। रोशनी बहुत तेज थी लेकिन बल्ब सिर्फ एक था। चिंटू थोड़ी दूर से खड़े खड़े ये सब देख रहा था। लाइन में से एक एक करके आदमी या औरत आते, कुर्सी वाला उनका मुंह देखता, अपने खाते में कुछ लिखता और फिर पार्क की ओर उनको भेज देता। कुछ कुछ लोगों को वो आदमी वापस भेज देता तो उनका हाथ पकड़कर एक हेल्पर टाइप का आदमी जो बैंगनी रंग के कपड़े पहना था वो थोड़ी आगे तक उन्हें छोड़ आता। पार्क ही था ना ये, तो पीछे क्या है ये? यही सोचता हुआ चिंटू एक बार देखने के लिए आगे बढ़ा कि ये लोग आखिरकार जा कहां रहे हैं, कर क्या रहे हैं। अगला एक लड़का था, यही कोई 17-18 साल का रहा होगा, चोट लगी थी शायद उसको, लंगड़ाता हुआ आ रहा था। उसके पीछे पीछे चिंटू चल दिया और वो जैसे ही पार्क के बड़े से गेट से अंदर चला गया, अंदर जाके उस पार्क के अंधेरे में गुम हो गया। चिंटू भी सोचने लगा कि क्या अजीब सी बात है, वहां इतनी रोशनी और इधर इतना अंधेरा, पर ये जा कहां रहे हैं? और जहां तक मुझे याद है यहां पार्क तो नहीं था, कुछ और है। जिस जगह को चिंटू अभी तक पार्क समझ रहा था उसके गेट को देखा तो ऊपर तख्ती पे लिखा था टॉलीगंज सेमेटरी, मतलब टॉलीगंज का कब्रिस्तान। चिंटू वो बोर्ड पढ़ते ही घबरा गया, होना ही था, गर्मी इतनी थी नहीं जितना उससे पसीना आ रहा था। डर के मारे उसके हाथ पांव ठंडे से पड़ गए थे। किसी तरह अपने आप को समेटा और घर वापस भागने को पलटा तो देखा टेबल पे जो आदमी बैठा था और उसके साथ जो उसका हेल्पर था, दोनों चिंटू के ठीक पीछे खड़े थे, उसे ऊपर से नीचे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। चिंटू ने दोनों के कंधे के ऊपर से झांक के देखा तो टेबल पे भी वो दोनों काम पे लगे हुए थे। एक ही समय पे ये दोनों के दोनों अलग अलग जगहों पर दिखाई कैसे दे रहे थे। चिंटू घबराया हुआ तो था ही, अब बुरी तरह कांपने भी लगा था। चिल्लाना चाह रहा था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। भागना चाह रहा था लेकिन मुड़े भागे दिमाग इतना काम ही नहीं कर रहा था। वो चीखे चिल्लाए या भागे इससे पहले ही वो मालिक टाइप का आदमी चिंटू को देख के मुस्कुराया और बोला,
तुम्हें कितनी बार मना किया है लेकिन तुम सुनते ही नहीं। हर बार रोशनी देखते हो और मुड़ जाते हो। और तुमसे मैंने कितनी बार कहा है, चिंटू के आसपास कहीं भी टेबल मत लगाया करो, लेकिन श्री श्री चित्रगुप्त किसी की सुनते कहां हैं?
चित्रगुप्त? और ये कौन? उनका बॉस? मतलब
तुम्हें कितनी बार मना किया है लेकिन तुम सुनते ही नहीं। हर बार रोशनी देखते हो और मुड़ जाते हो। और तुमसे मैंने कितनी बार कहा है, चिंटू के आसपास कहीं भी टेबल मत लगाया करो, लेकिन श्री श्री चित्रगुप्त किसी की सुनते कहां हैं?
चिंटू अब तो भागने की हालत में भी नहीं था। उसका चेहरा देखकर यमराज खुद ही बोल पड़े,
उफ, तुमने मुझे जितना परेशान किया है आज तक किसी ने नहीं किया। यह पांचवीं बार है कि तुम मेरी सभा के बीच में पहुंचे हो। हर बार मैं तुम्हारी यादें मिटाता हूं, तुम्हें सपने से जगाता हूं और तुम फिर से दिख जाते हो।
मतलब ये पहले भी हुआ था? यमराज ने ऐसा सोचते हुए जैसे चिंटू का मन पढ़ लिया हो बोले,
हां हुआ तो है ही, पांच बार। पहली बार हुआ था जब मैं तुम्हारे माता पिता को लेने आया था। कितना रो रहे थे तुम, मुझे भी दुख हुआ था बहुत तुम्हारे लिए, लेकिन क्या करें, जीवन मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता बेटा। बस इतना है कि अच्छे लोगों को लेने स्वयं मैं आता हूं। यमदूत थोड़े गुस्सैल होते हैं ना, अच्छी बुरी आत्माओं में फर्क नहीं कर पाते, सिर्फ अपना काम करते हैं। पर जो भी हो, तुम उसके बाद भी चार बार मुझसे ऐसे समय पर आके भिड़ गए। पहले एक दो बार तो मैं समझ नहीं पाया कि तुमको हम लोग दिखाई कैसे दे जाते हैं, लेकिन फिर मुझे पूरी बात समझ में आ ही गई। तुम इस तरह हमें बार बार देख कैसे पाते हो, इसका उत्तर तुम्हारे मन में है। आज तुम्हें नींद नहीं आ रही थी, इसके पिछली बार माता पिता की बरसी पे तुम अकेला महसूस कर रहे थे। उसके पिछली बार तुम्हें तुम्हारी दीदी और जीजा जी जो माता पिता से कम नहीं थे, वो देश छोड़ के विदेश चले गए थे। हर बार जब जब तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो या तुम्हें जीने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा कोई है नहीं, तब तक तुम्हें मैं दिखाई दिया। लेकिन तुमने कभी ये नहीं सोचा कि अगर तुम जो बीत गया उसका सम्मान करो, उसे स्मरण करके मुस्कुरा के आगे बढ़ जाओ, अपना खुद का परिवार बसाओ, तो तुम अपने आसपास सबको कितनी खुशियां बांटोगे। ये जो जीवन है उसे फिर से खुशी से जीने का लक्ष्य मिलेगा तुम्हें।
चिंटू को यह सब सुनके बहुत अजीब लग रहा था। उसने यमराज से बोला, पर मेरा काम यहां है क्या? मेरे जीने या मरने से किसी को क्या फर्क पड़ जाएगा? इतनी बड़ी दुनिया, इतना सा मैं, क्या फर्क पड़ता है? यमराज इस बात में हंस के बोले,
तुम यहां हो इससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी को या किसी ना किसी बात को फर्क पड़ता है, इसीलिए तुम यहां हो। एक चींटी से लेके एक हाथी, न दिखने वाले जीवाणुओं से लेकर के सबसे बड़ी ब्लू व्हेल तक, सबके पैदा होने से लेकर मरने तक हर एक चीज से पूरी दुनिया को फर्क पड़ता है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर फर्क जरूरी होता है। अपनी जिंदगी को जियो, खुश कैसे रह सकते हो यह सोचो और अब जाग जाओ।
इतना कह के यमराज की चुटकी बजी और चिंटू की आंख खुली। उसने उठ के देखा, सोमवार था, संडे कहां गया, क्या किया क्या नहीं कुछ याद नहीं आ रहा था। बस सैटरडे रात को टहलने निकला था ये याद था। चिंटू जल्दी जल्दी उठा, नहा धो के ऑफिस के लिए निकल पड़ा और रास्ते में जाते जाते एक मोड़ आया। यहां अमूमन तो कभी भी चिंटू नहीं आता था, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुड़ा। थोड़ा आगे जाके देखा तो एक टूटा हुआ छोटा सा बल्ब पड़ा था और सड़क के किनारे कब्रिस्तान के गेट के पास एक छोटी सी टेबल और कुर्सी रखी थी और टेबल पे एक मोटा सा रजिस्टर रखा था।
आप सुन रहे थे
एक अधूरी कहानी,
कहानी वाला देव के साथ, प्रेजेंटेड बाय फीवर नेटवर्क। इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @HTSmartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.htsmartcast.com।